लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार वित्त प्रभारी सरकारों के साथ मिलकर वित्तीय क्षेत्र को उचित ढंग से विनियमित कर नागरिकों को इसके खतरों से बचाए रखें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें तथा सभी बाधाओं और अड़चनों को जीवन से दूर रखें। हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। श्रोताओं, ये थे 147वें भजन के पांचवें, छठवें और सातवें पदों के शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस भजन की रचना तब हुई जब बाबुल में निष्कासन के बाद इजरायली प्रजा पुनः सियों लौटी तथा उसने एक बार फिर यरूशलेम के निर्माण का बीड़ा उठाया। इसीलिए भजनकार कहता है, प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता और इजरायली निर्वासितों को एकत्र करता है। और फिर हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। श्रोताओं, मानव जाति के प्रति पिता ईश्वर का प्रेम असीम और अपरिमित है, जिसकी था तक पहुंचना मनुष्यों की बुद्धि से परे है। उनकी प्रेममय शक्ति मानव समझ और मानवीय मापदंडों के परे है। इसी कृपा में शक्ति को ईश्वर दीनहीनों की मदद में प्रकट करते हैं। आगे 7 से लेकर 11 तक के पदों में भजनकार कहता है, धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता, पृथ्वी पर पानी बरसाता और पर्वतों पर घास उगाता है। वह पशुओं को चारा देता है और कौओं के बच्चों को भी जो उन्हें पुकारते हैं। वह युद्धाश्व की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता और मनुष्यों के बल को महत्व नहीं देता। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। श्रोताओं का ध्यान हमने इस ओर आकर्षित कराया था कि 147वें भजन का प्रत्येक खंड प्रभु की स्तुति से आरंभ होता है और अंत में प्रभु की स्तुति का कारण बताया जाता है। पहले खंड में प्रभु की स्तुति सियों की देखभाल के लिए, दूसरे खंड में सृष्टि की देखभाल के लिए और तीसरे खंड में ईश प्रजा को मिली शांति के लिए प्रभु का गुणगान किया गया है। चौथे यानी कि 7 से लेकर 11 तक के पदों में प्रभु ईश्वर के प्रति धन्यवाद दिया गया है। प्रभु आकाश को बादलों से आच्छादित करते और पृथ्वी पर पानी बरसाते हैं, जिससे समस्त प्राणियों को भोजन मिलता है। प्रभु ईश्वर केवल मनुष्यों की ही नहीं अपितु पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन सब की देखभाल करते और उनके भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए प्रभु की कृपा पर भरोसा रखा जाए तथा दिन प्रतिदिन उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जाए। अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 147वें भजन के 12 से लेकर 20 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। भजनकार कहता है, जरूसलम प्रभु की स्तुति कर, सियों अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण छितराता है, ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है और जल धाराएं बहती हैं। और फिर भजन के अंतिम दो पदों में कहता है, वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी भी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया, उसने उनके लिए अपने नियम प्रकट नहीं किए। अल्लेलुया। भजनकार प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद आराधना अर्चना के लिए पहुंचे लोगों से आग्रह करता है कि वे इसलिए ईश्वर की स्तुति करें क्योंकि ईश्वर ने उनके शहर के फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए हैं। इन पदों में भजनकार 127वें भजन का स्मरण दिलाता है, जिसमें स्पष्टतः कहा गया है कि यदि प्रभु ही नगर की रक्षा न करें तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा न करें तो पहरेदार व्यर्थ ही जागते हैं। अस्तु, प्रभु पर प्रतिपल भरोसा किया जाए। इन पदों में नगर और नगरवासियों के प्रति ईश्वर के प्रेम और उनकी देखरेख की प्रकाशना की गई है। प्रभु ही भक्तों के प्रांतों में शांति बनाए रखते और उन्हें उत्तम गेहूं से तृप्त करते हैं। श्रोताओ, 147वें भजन के उक्त पद केवल सियों और इसराइल के लोगों को ही संबोधित नहीं है, अपितु यह युग युगांतर तक के सभी लोगों को संबोधित हैं। आज भी प्रभु ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते, वे आज भी स्थानीय कलीसियाई समुदायों और उनकी पल्लियों तथा उनके गिरजाघरों की रक्षा करते हैं। वे केवल हमारे नगर के प्रवेश द्वारों, उसके गिरजाघरों, मंदिरों और मस्जिदों की दीवारों की ही नहीं, अपितु उनमें निवास करने वाले समस्त लोगों की रक्षा करते हैं। इसलिए हम प्रभु की ही शरण जाएं तथा सब कुछ के लिए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते रहें। 14वें पद में भजनकार कहता है, वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। श्रोताओ, यहाँ यह स्मरण रखा जाना जरूरी है कि यदि हम शांति का एहसास पाते हैं, यदि हम शांति का अनुभव करते हैं, तो यह ईश कृपा का ही फल है। यदि हम तृप्ति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं, यह भी ईश अनुकंपा का ही परिणाम है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि मानव मन की वास्तविकताएं, जैसे कि मन की शांति, हृदय की विश्रांति, सामाजिक कल्याण और क्यों नहीं भौतिक संपन्नता भी शांति के स्रोत हुआ करते हैं, इसी प्रकार ईश्वर की योजना में भी मनुष्यों के लिए शांति ही लिखी गई है, जिसकी प्राप्ति के लिए प्रभु ईश्वर उपयुक्त प्राकृतिक परिस्थितियों की रचना करते हैं ताकि हम ईश योजना में सहयोग कर सकें तथा प्रभु के नियमानुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें, उन नियमों का पालन करें जिन्हें नबी मूसा के माध्यम से प्रभु ईश्वर ने सिनै पर्वत से अपनी प्रजा पर प्रकट किए थे।
हे ईश्वर, तेरी दया स्वर्ग तक छाई। हे ईश्वर, तेरी दया स्वर्ग तक छाई। है तेरी निष्ठा मेघों पर लहराई। हे ईश्वर, तेरी दया स्वर्ग तक छाई। पावन गिरिसा न्याय अटल है तेरा। पावन गिरिसा न्याय अटल है तेरा। गहरे सागर सा निर्णय है तेरा। गहरे सागर सा निर्णय है तेरा। प्रभु मनुज और पशुओं का है त्राता। हे ईश्वर, तेरा प्रेम अमोल सुहाता।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज कैथोलिक कलीसिया प्रभु के स्वर्गारोहण का महापर्व मनाती है। संत पापा फ्रांसिस ने इस अवसर पर प्रेषित अपने ट्वीट संदेश में प्रभु के स्वर्गारोहण और उनके द्वारा प्रदान किए गए मिशन की याद दिलाई एवं उससे पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, स्वर्गारोहण का महापर्व हमारी नजर को पृथ्वी की चीजों से ऊपर उठाता है, साथ ही साथ यह हमें यहाँ पृथ्वी पर प्रभु द्वारा प्रदान किए गए मिशन का स्मरण दिलाता है। पवित्र आत्मा उस अच्छे संघर्ष में हमारा मार्गदर्शन करे जिसको हमें पूरा करना है। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा ने फातिमा की माता मरियम की याद की तथा उनसे प्रार्थना करने का आह्वान किया। उन्होंने लिखा, हमारा जीवन और दुनिया का इतिहास ईश्वर के हाथों में है। आइए हम कलीसिया अपने आप को और संपूर्ण विश्व को कुंवारी मरियम के निष्कलंक हृदय को अर्पित करें। आइए हम शांति के लिए, महामारी के अंत के लिए, पश्चातापी भावना के लिए और हमारे मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। 13 मई 1917 को पुर्तगाल के चरवाहे बच्चों लुसिया, जसिंता एवं फ्रांसिस को माता मरियम ने दर्शन देकर कहा था, क्या तुम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना चाहते हो उन सभी पीड़ितों के लिए जिनको वे तुम्हारे लिए उनके पापों के प्रायश्चित एवं मन परिवर्तन हेतु भेजेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन प्रकाशन केंद्र द्वारा प्रकाशित नमक और खमीर के रूप में कलीसिया के समर्पित जीवन के ई शास्त्र के लिए टिप्पणियां शीर्षक की किताब हेतु प्रस्तावना लिखी है। इताली भाषा में लिखी किताब दो इताली फ्रांसिस्कन पुरोहितों फादर वालेंटिनो नतालिनो और फेर्दिनांदो कंपाना ने लिखा है। किताब को 14 मई को प्रकाशित किया जाएगा जिसमें कलीसिया की धर्म शिक्षा के संदर्भ में समर्पित जीवन, भविष्यवाणी, मिशन, धर्म विधि, नरक और स्वर्ग के सिद्धांत, आध्यात्मिकता, पौत्रता, त्रित्वमय ईश्वर, कुंवारी मरियम और संत योसेफ आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। किताब के लिए अपनी प्रस्तावना में संत पापा ने कहा है कि कलीसिया क्यों सुंदर कही जाती है। उन्होंने लिखा है, कलीसिया सुंदर है क्योंकि वह अपने दूल्हे प्रभु के द्वारा प्रेम की जाती है और उनके दूल्हे के प्रेम ने उसे फलदायी, सुंदर और प्रशंसित बनाया है। समर्पित जीवन की विषय वस्तु पर गौर करते हुए संत पापा ने इंगित किया है कि कलीसिया हमेशा जीवन की तीन स्थितियों से बनी है, एकल जीवन, वैवाहिक जीवन और समर्पित जीवन। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये तीन लगातार प्रतिस्पर्धा में अलग अलग डिब्बे नहीं है, न ही एक विशाल महासागर में तीन द्वीप। संत पापा ने कहा है कि कलीसिया के पूरे इतिहास के जीवन में तीनों स्थितियों ने पौत्रता के रास्ते की गारंटी दी है। हर एक मानव व्यक्ति के अधिकार के लिए सम्मान की मांग में दृढ़ भावना संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की विशेषता थी। उक्त बात सेंट पापा जॉन पॉल द्वितीय के निजी सचिव क्राको के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल स्टानिस्लाव डिजीविज ने कही। सेंट पापा जॉन पॉल द्वितीय पर गोली चलाए जाने के 40 वर्ष पूरा होने पर कार्डिनल ने उस दिन की घटना की याद की है। 13 मई 1981 को सेंट पापा जॉन पॉल द्वितीय पर अली अक्का नामक लड़के ने सेंट पेत्रस महाकिर्चघर के प्रांगण में गोली चलाई थी और उन्हें घायल कर दिया था। गोली पोप के पेट में लगी थी। कार्डिनल ने कहा, अपने परमाध्यक्ष काल के आरंभ से ही उन्होंने प्रताड़ित एवं शोषित लोगों के हित में जोरदार अपील की थी। पोलैंड जैसे देश के होने के कारण, जिसने 20वीं सदी में नाजीवाद और साम्यवाद के अत्याचार का अनुभव किया था, जॉन पॉल द्वितीय ने नागरिकों और पूरे समाज के खिलाफ सरकारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अधिनायकवादी हिंसा से होने वाले नुकसान को पूरी तरह समझा था। अतः दृढ़ भावना से उन्होंने हरेक व्यक्ति के अधिकार और प्रतिष्ठा की मांग की। महाधर्माध्यक्ष ने जोर दिया कि यह उनका एक ऐसा मिशन था जिसको हमला ने भी नहीं रोक सका। कार्डिनल स्टानिस्लाव उस दिन की याद करते हैं जिसको उन्होंने खुद देखा था। उन्होंने कहा, मैंने पोप को संभाला जो गिर रहे थे और उनसे खून बह रहा था। मैं सदमे में था, किंतु जानता था कि उनके जीवन को बचाने के लिए अवश्य कुछ करना था। पीड़ा के बावजूद सेंट पापा शांत थे और उन्होंने अपने आप को ईश्वर एवं माता मरियम को समर्पित किया और अस्पताल के रास्ते पर अपनी चेतना खोते खोते मुझसे कहा कि जिस किसी ने गोली चलाई है मैं उसे क्षमा देता हूँ। वास्तव में 27 दिसंबर 1983 को उन्होंने रिबिबिया के जेल में अली अक्का से मुलाकात की। कार्डिनल ने कहा कि सेंट पापा जॉन पॉल द्वितीय का एक मिशन था जो उन्हें ईश्वर की ओर से दिया गया था, जिसको उन्होंने अंत तक साहस के साथ पूरा किया। क्राको के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष ने 13 मई को 10:30 बजे सेंट पेत्रस महाकिर्चघर के प्रांगण में हमला किए गए स्थान पर गुलदस्ता अर्पित कर सेंट पापा जॉन पॉल द्वितीय को श्रद्धासुमन अर्पित किया। ग्रेट ब्रिटेन के धर्माध्यक्षों ने पौत्रभूमि में शांति हेतु प्रार्थना का आह्वान किया है। धर्माध्यक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अध्यक्ष एवं खासकर पौत्रभूमि के समन्वय के अध्यक्ष मॉन्सिन्योर डेक्लान लांग ने विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा, चिंता, भेदभाव एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन जिनके कारण नागरिकों के खिलाफ हिंसक हमले बढ़ रहे हैं, फिलिस्तीन एवं इसराइल के लिए स्थिर और शांतिमय भविष्य हेतु बाधक हैं। इंग्लैंड एवं वेल्स के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने अपने वेबसाइट पर एक आह्वान जारी करते हुए कहा है, शांति के लोगों की तरह हम प्रार्थना करते हैं कि हवाई हमले, गोलीबारी, मिसाइल हमले और सामुदायिक हिंसा का अंत हो जो पौत्र भूमि को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। संत पापा फ्रांसिस ने याद दिलाया है कि हरेक हिंसक कृत्य जो दूसरे मानव व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है वह मानवता के शरीर पर एक घाव है। हर हिंसक मौत हमारी इंसानियत को कम करता है, इसलिए हम यरूशलेम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त स्थिति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। इसके पौत्र स्थलों की प्रतिष्ठा एवं शहर में यहूदियों, ख्रिस्तियों एवं मुसलमानों के समान अधिकार की पुष्टि करते हैं। धर्माध्यक्षों ने कहा है कि इस संकटपूर्ण समय में वे मानवीय सहायता पहुंचाने वाले संगठनों को अपना समर्थन दे रहे हैं जो जीवन बचाने एवं पीड़ा कम करने के लिए अथक रूप से कार्य कर रहे हैं। तेल अवीव और गाजा में बुधवार को हिंसा बहुत अधिक बढ़ गई। संयुक्त राष्ट्र को आशंका है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होकर युद्ध में परिणत न हो जाए। बुधवार की सुबह रॉकेट की आग ने धुंधले आसमान को रोशन कर दिया क्योंकि इसराइल और हमास के बीच हिंसा बढ़ गई। इसराइल ने गाजा में हवाई हमले को अंजाम दिया जबकि फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने तेल अवीव और दक्षिणी शहर बीरशेबा में कई रॉकेट दागे। सोमवार को हिंसा तेज होने के बाद से इसराइल में 6 लोग मारे गए हैं और गाजा में करीब 43 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।